श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्ये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री रामानुजाय नमः श्री रामानुजाय नमः श्री रामानुजाय नमः श्री वेंकटेश्वराय नमः श्री वेंकटेश्वराय नमः श्री वेंकटेश्वराय नमः विश्व में चार वैष्णव संप्रदाय हैं। वैष्णव संप्रदाय का मतलब भगवान नारायण विष्णु राम कृष्ण के भक्त, उनकी भक्ति करने वाले। और ये संप्रदाय एक शुरू करती है लक्ष्मी माता, उसको कहते हैं श्री संप्रदाय। इस श्री संप्रदाय का मुख्य आचार्य है श्रीपाद रामानुज आचार्य। दूसरी वैष्णव संप्रदाय जो ब्रह्मा जी शुरू करते हैं उसके मुख्य आचार्य मध्व आचार्य श्रीपाद। तीसरी वैष्णव संप्रदाय चार कुमार शुरू करते हैं उनका मूल आचार्य श्रीपाद निंबारक आचार्य। और चौथी संप्रदाय भगवान शंकर रुद्र संप्रदाय परम वैष्णव भगवान शंभू शुरू करते हैं और उसका मूल आचार्य वैष्णो विष्णु स्वामी। तो श्रीपाद रामानुज आचार्य फाउंडिंग श्री संप्रदाय के संस्थापक हैं। रामानुज आचार्य से पहले बहुत बड़े दक्षिण भारत के वैष्णवा अलवार कहते थे, उन्होंने बहुत भगवान विष्णु की गीत लिखे थे। रामानुज आचार्य ने संस्था को स्थापित किया। आज दुनिया में सबसे शाहूकार मंदिर, सबसे रिच टेम्पल वेंकटेश शैल, शैल कहते हैं पर्वत को, जैसे यहां मौनताएं कहते हैं ना, ऐसे शैल कहते हैं। शैलाद्री के ऊपर भगवान वेंकटेश विराजमान है, उसकी पूजा का आरंभ ही श्रीपाद रामानुज के शिष्य के द्वारा किया गया। और श्रीपाद रामानुज आचार्य वहां गए तो सबसे दुनिया का शाहूकार मंदिर और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर श्री रंगम, भगवान श्री रंगनाथ, वो श्रीपाद रामानुज आचार्य का मुख्य पीठ रहा। तो दुनिया के सबसे धनी और सबसे बड़े मंदिर श्रीपाद रामानुज आचार्य के संचालन से चले। श्रीपाद रामानुज आचार्य से पहले जिनका प्रभाव श्रीपाद रामानुज आचार्य के जीवन में पड़ा वो है बहुत बड़े, उसको अलबंदार कहते हैं। अलबंदार तमिल में कहते हैं विजय जिसकी हो जाए, विजयी। तो उसका नाम है यमुना आचार्य। तो ये कथा यमुना आचार्य से शुरू करते हैं संक्षेप में। नाथ मुनि के बेटे ईश्वर मुनि, ईश्वर मुनि के पुत्र हुए, उनका नाम रखा यमुना, क्योंकि वो वृंदावन गए थे, यमुना का दर्शन किया, उसका नाम यमुना रखा। उनके पिताजी छोटी उम्र में देहांत हो गए, वो अपने गुरु के आश्रम में पढ़ रहे थे। उस वक्त एक बहुत बड़ा पंडित पांड्या राजाओं के पास था, वो कहता था मुझे कोई हराए शास्त्र में, नहीं हराए तो मेरे को टैक्स दे। तो 2 साल से यमुना आचार्य के गुरुजी ने टैक्स नहीं दिया था उस रुद्र चिन्ह कोलाहल पंडित को। वो जब टैक्स लेने के लिए आए और कहा आपके गुरु ने हमारा टैक्स क्यों नहीं दिया है, आप सबको उधर चलना चाहिए। तो उन्होंने कहा आपके गुरुदेव से टैक्स क्यों मांग रहे हैं, बोला हमसे हरा के गया है। बोला मैं 12 साल का बच्चा हूं, आपके गुरु को चैलेंज करता हूं, मैं उसके साथ शास्त्र का अर्थ करूंगा। और ये समाचार राजाओं को पहुंचा तो राजा ने कहा आप छोटे 12 साल के बच्चे कैसे करोगे ये, और तो आपको, बोला मेरे को इतने बड़े पंडित के साथ शास्त्र अर्थ करना है, डिबेट करनी है, तो मेरे को उस बड़े वैभव के साथ वहां ले जाया जाए। पालकी में ले गए। राजा और राजा की रानी आपस में कहते हैं ये छोटा बच्चा 12 साल का इतने बड़े दिग्विजयी पंडित को कैसे हराएगा। रानी कहती है मेरा दिल कहता है ये बच्चा आपके पंडित को हराएगा। तो राजा ने कहा फिर हम शर्त रखते हैं। बोला क्या शर्त रखते हो। बोला अगर ये बच्चा हार गया, रानी ने कहा, तो मैं आपके दासियों की दासी बन जाऊंगा। राजा ने कहा अगर ये बच्चा जीत गया तो मैं आधा राज इसको दे दूंगा। यह राजा और रानी के बीच में बात हो गई। यमुना आचार्य छोटे बच्चे आए, कोलाहल पंडित कहता है ये छोटा बच्चा क्या करेगा, 4, 5, 6, 7 ग्रामर के क्वेश्चन पूछे, व्याकरण के पूछे, सबका उत्तर दे दिया। तो उसे बड़ा पंडित लग रहा है और कहने लगे यमुना आचार्य जी कि पंडित जी आप बच्चों के प्रश्न मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो कहा अब आप पूछो। तो छोटे बालक ने कहा मैं आपके सामने 3 प्रश्न रखता हूं, आप उसको एक्सप्लेन करें, अगर आपने उसको प्रोपोजिशन जो मैं रखता हूं उसका आपने उत्तर कर दे दिया तो मैं हार गया। उसने बोला ठीक है बोलो। उसने बोला पहला मेरा प्रश्न है तुम्हारी माता बांझ नहीं है। योर मदर इज नॉट बैरन वुमन, आपकी माता वांझ नहीं है. बोलते मैं उसका बेटा हूं तो मेरी माता वांझ कैसे होगी. वो परेशान हो गया तो सब लोग देखने लगे, इतना बड़ा पंडित उत्तर नहीं दे पा रहा है. बोला कोई बात नहीं, दूसरा प्रश्न पूछता हूं, बोलो. और दूसरा प्रश्न पूछा, हमारा राजा बहुत धार्मिक है, बड़ा न्यायकारी है. अब कोलाहल कहता है, राजा को कैसे मैं कहूं कि ये अधर्मिक है और ये बहुत बड़ा जो है ईमानदार नहीं है, कैसे बोलूं. उसको उत्तर नहीं आया, वो पसीना निकलने लगा, ये बच्चा कैसा प्रश्न पूछ रहा है. बोला ठीक है, तीसरा प्रश्न भी मेरा सुन लो. बोला क्या तीसरा प्रश्न है. बोला राजा की रानी बहुत ही राजा से प्रेम करती है और उसके साथ राजा की सती पत्नी है. अब कैसे कहे कि पत्नी सती नहीं है. कोलाहल हार गया. कोलाहल ने बोला ये कौन से प्रश्न पूछे, मैं कैसे राजा को कहूं कि तुम अधर्मी हो, कैसे को राजा की पत्नी को कहूं कि तुम जो है पति से प्रेम नहीं करते हो, सती नहीं हो, और मैं मेरी मां का बेटा हूं, मेरी मां को कैसे बांझ कहूं. इसको दंड दे दिया करो, इसको दंड दे दीजिए, इसको दंड दे दीजिए, इसको मरवा दीजिए. राजा ने कहा तो बच्चे आप इसका उत्तर दे दो. तो श्रीपाद यमुना आचार्य कहते हैं, मनुस्मृति में लिखा है जिस मां ने एक बेटे को जन्म दिया वो वांझ मानी जाती है, उसका कोई वो तो बैरन वुमेन है. अरे तुम तो एक ही बच्चे हो अपनी मां के, इसलिए तुम्हारी मां बांझ नहीं है. नहीं, बांझ है. ये तो बात ठीक है, मनुस्मृति में लिखा है. थोड़ा बोला हमारा राजा बहुत बड़ा धर्मात्मा है, तुम इसका कैसे खंडन करोगे. बोला कल युग है, लोग बड़े पापी हैं, लोगों के धर्म का छठा हिस्सा भी राजा को मिलता है, सिक्स पोर्शन ऑफ देयर पुण्य, और पाप का छठा हिस्सा भी राजा को भोगना पड़ता है. तो इतने कलयुग में पापी है तो राजा धार्मिक कैसे हुआ. जनता का पाप तो राजा के ऊपर लगेगा ना. बोला तीसरा प्रश्न, राजा की रानी पतिव्रता नहीं है, सती नहीं है. बोला बहुत बड़ी माननीय सती है, पतिव्रता है, लेकिन मैं कहता हूं कि राजा के अंदर सूर्य चंद्रमा अग्नि वरुण आठ देवों का वास होता है, तो इनका विवाह तो आठ देवताओं के साथ भी हुआ ना, फिर यह कैसे पतिव्रता हुई. ओ रानी ने कहा अलबंदार अलबंदार, विजय हो गई विजय हो गई, ये लड़का जीत गया, और राजा ने अपना आधा राज दे दिया और यमुना आचार्य राजा बन गए बहुत बड़े. लेकिन उनके दादा नाथ मुनि ने अपने एक शिष्य को कहा कि ये मेरा पोता बहुत बड़ा धर्मात्मा भक्त था, इसको वापस भगवान विष्णु के चरण में लाओ. एक दिन उसने जाके कहा कि आपका दादा मेरे पास संसार से भगवत धाम जाने से पहले धन रख के गया है और सात दीवारों में है, सांप उसके ऊपर चौकीदारी करता है, एक बहुत बड़ा राक्षस 12 साल में एक बार आता है और उसका ताला माला मंत्र से खुलता है. इसने कहा मुझे बहुत जरूरत है धन की, राजा मेरे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, आप बोला मेरे साथ चलो. बोला सेना ले चलो, उन्हें बोला अकेले चलो. जब रास्ते में आधे में आए तो उन्होंने बैठ के भगवत गीता पढ़ना शुरू किया नाथ मुनि के शिष्य ने, और भगवत गीता के श्लोकों को सुनते सुनते यमुना आचार्य को अपने गुरुकुल की दिन याद आ गए, भगवान विष्णु की याद आ गई. पूछा कहाँ खजाना है, अब क्या करूंगा खजाना, भगवान का कथा करूंगा. बोला खजाना क्या श्री रंगम, मंदिर सात दीवारों के अंदर है, जैसे वैकुंठ के सात दरवाजे होते हैं ऐसे श्रीरंगम मंदिर सात दीवारों के अंदर है, और भगवान जो श्रीरंगम है वो शेष नाग के ऊपर सोए हुए हैं, तो वो सांप उसके ऊपर छाया कर रहा है. 12 साल में विभीषण लंका से पूजा करने के लिए आता है, वो राक्षस से अभी भी पूजा करने आता है, और उन्होंने इस मंदिर को स्थापित किया था, और मंत्र ओम नमो नारायणाय ये आठ अक्षर के मंत्र, अक्षर के मंत्र से ये खजाना खुलता है. बोला मैं समझ गया, और ला के जैसे भगवान श्री रंगा नाथ के सामने खड़ा हो गया, महाराज ने राजपाट छोड़ दिया और बहुत बड़े वहां गुरु बने श्रीपाद यमुना आचार्य। श्रीपाद यमुना आचार्य के पांच मुख्य शिष्यों का श्रीपाद रामानुज आचार्य, जिनके हम हजार साल जन्म के मना रहे हैं, उन्होंने यमुना आचार्य पाद के पांच शिष्यों से गोष्ठी पूरण, मालाधर, वारंगा श्रीपाद यमुना आचार्य के पुत्र का नाम है वारांग, बहुत सुंदर गाते थे। और वही श्रीपाद यमुना ब्राह्मानुज आचार्य को कांची से कांचीपुर, जिसमें भगवान वरदराज रहते हैं विष्णु, जो सबको वरदान देते हैं, वहां रहते थे, वहां से बुला के लाए थे। गोष्ठी पूरण, मालाधर, वारंगा और उसके बाद कांची पूरण और महापूरण। कांची पूरण, महापूरण, ये पांच श्रीपाद रामानुज आचार्य के शिष्यों के श्रीपाद रामानुज आचार्य ने श्रीपाद यमुना आचार्य के शिष्यों को गुरु करके माना। इसलिए कहते हैं बहु गुरु, एक नहीं, गुरु बहुवचन में होता है। गुरु वो पांच के अंदर जो यमुना आचार्य के अंदर भगवान की भक्ति थी, वो सारी इन पांच के द्वारा सबके पास श्रीपाद रामानुज आचार्य ने जाके प्राप्त किया। अब वो कथा कल सुबह भी करेंगे, अब समय के अनुसार एक तीसरी बात बता के आगे कथा को बढ़ाते हैं। बहुत इच्छा थी यमुना आचार्य के, मैं चाहता हूं कि रामानुज आचार्य यहां श्री रंगम में आके रहे और मेरे बाद यहां ये पीठाधीश्वर बने, यहां का आचार्य बने। तो भेजा था लेने के लिए महापुरण को, महापुरण वहां गए और कहा कि आपको यमुना आचार्य दर्शन करना है, आपको बुलाया है दर्शन के लिए। तत्काल रामानुज आचार्य अपने घर नहीं गए, वरदराज को प्रणाम किया और पैदल चार दिन चल के श्री रंगम आए। और जिस दिन वहां पहुंचे, उस दिन रामानुज आचार्य श्रीपाद शरीर शांत हो गया था। कावेरी के तट के ऊपर उनकी अंत्येष्टि क्रिया के लिए सब शिष्य बैठे थे और ये महापुरुष ने जैसे सुना कि ये नगर में क्या हो रहा है, बोला यमुना आचार्य बहुत बड़े महान, वो तो भगवत धाम को रवाना हो गए। महापुरुष मूर्छित हो गया और फिर जब सचेत हुआ तो श्रीपाद रामानुज आचार्य के साथ जब वो मूर्ति के सामने, उसके शरीर जो छूट गया था, आत्मा निकल गया था, उसको रामानुज आचार्य देखते रहे और देखते रहे और सब देख रहे हैं कि ये क्या देख रहे हैं। वो देख रहे थे जैसे उनसे बात कर रहे हैं। अचानक उन्होंने देखा कि यमुना आचार्य की तीन उंगलियां ऐसे बंद पड़ी और दो उंगलियां खुली पड़ी, दूसरा हाथ ठीक है। उनने सबसे पूछा कि ये बड़े अलबंदोर, नाम उनका अलबंदार हो गया, बहुत विजयी अलबंदार, कि अलबंदार की तीन उंगलियां पहले ऐसे थी कि अभी से है? बोला नहीं, पहले नहीं थी, अभी से है। तो उन्होंने, रामानुज आचार्य ने जैसे उनसे प्रेरणा ली, उनके सामने तीन वचन किए रामानुज आचार्य ने। पहला वचन किया, मैं वेदांत सूत्र के ऊपर श्री भाष्य कमेंट्री लिखूंगा, मैं श्री भाष्य लिखूंगा। एक उंगली सीधी हो गई, वो शरीर छूटा था, शरीर नहीं था, आत्मा निकल गई थी, एक उंगली सीधी हो गई। फिर श्रीपाद रामानुज आचार्य ने दूसरा वचन किया, मैं वैष्णविज्म का, इस वैष्णव धर्म का पूरे भारत में प्रचार करूंगा, दूसरी उंगली सीधी हो गई। और फिर उन्होंने कहा, मैं अपने एक शिष्य का नाम पराशर रखूंगा, जो विष्णु पुराण का रचिता है, वो जिसने विष्णु पुराण को प्रकट किया है। तब तीसरी उंगली ऐसे खड़ी हो गई, सबको आश्चर्य लगा कि रामानुज आचार्य ने श्रीपाद यमुना आचार्य के तीन इच्छाएं जो उन्होंने पूरी नहीं की थी, उन तीन इच्छाओं को समझ लिया है। और श्रीपाद रामानुज आचार्य ने ये तीन काम इस धरती के ऊपर करके दिखाए। एक दिन एक शिष्य, दो मुख्य शिष्य रामानुज आचार्य के, एक का नाम कुरेश है, और कुरेश इसलिए कहते हैं कि उसका बहुत वो कुरा नाम का एक पूरी एरिया का वो राजा था और बड़ा धनी था, तो उसको कुरेश कहते हैं। और कुरेश को साथ लिया, जिसको वो जो चीज एक बार सुन लेता था या पढ़ लेता था उसको फोटो मेमोरी थी, सब कुछ याद हो जाता था। कुरेश को साथ लेकर श्रीपाद रामानुज आचार्य पैदल 4 महीना चल के कश्मीर गए। उन्होंने कहा जब तक बोधायन वृत्ति, जिसके अंदर मायावादियों का सब सिद्धांत लिखा है, वो मैं पढ़ूंगा नहीं, तब तक मैं कैसे भाष्य लिख सकता हूं श्री भाष्य वेदांत सूत्र के ऊपर। कश्मीर पहुंचे, पंडित ने उनका आदर किया। उन्होंने कहा बोधायन दो, उन्होंने कहा इसको बोधायन देंगे तो ये सारे हमारे जो सिद्धांत है खंडन कर देगा। रात को शारदा मठ, उस मठ का नाम है शारदा मठ कश्मीर में, शारदा मठ से शारदा देवी प्रकट होके बोधायन का पुस्तक लाके रामानुज को दिया, बोला ये बेटा लो और यहां से चलो। अब रामानुज रात रात को कोलाहल के अपने कुरेश शिष्य के साथ वहां से निकले हैं, और पीछे कुछ दिनों के बाद वो लाइब्रेरी में अपना पुस्तक नहीं देखा बोधायन, कहा कि ये दो आए थे वैष्णव वो ले गए होंगे। उन्होंने एक पार्टी पूरी भेजी उनके पीछे, वो महीना दे महीने के बाकी जाके पहुंच गए और उनको कहा आप हमारे पुस्तक लेके आए हो। कहा ये पुस्तक पढ़ा है हमारे को तो शारदा माता ने दिया था, वो पुस्तक लेके चले गए। रामानुज आचार्य कहते हैं कुरेश इतना सारा 4 महीने का पैदल चले, वो शास्त्र को पढ़े नहीं, मैं श्री भाष्य कैसे लिखूंगा। कुरेश कहते हैं गुरु जी चिंता मत कीजिए, गुरुदेव रात को मैं रोज उसको पढ़ता था और मैंने सारा पढ़ लिया और मेरे को सब याद है। रामानुज आचार्य ने कहा फिर हम यहीं बैठते हैं, तुम बैठ के इसको लिखो। उन्होंने जब लिख लिया तो श्रीपाद रामानुज आचार्य ने फिर आके कहा कि अब कुरेश तुम मेरे सेक्रेटरी बन जाओ, तुम मेरे सचिव बनो, मैं लिखाता हूं तुम लिखते जाओ, अगर तुम्हारे को कोई बात समझ में नहीं आए तो लिखना बंद कर देना, तो मैं समझ जाऊंगा, मैं उसके ऊपर एक बार और सोच लूंगा। तो श्रीपाद रामानुज आचार्य जाके पहले श्री रंगनाथ का मंदिर में, दुनिया का बड़े से बड़ा मंदिर, 7 दीवारों में कावेरी नदी उनको घेरती है चारों ओर से, वो बीच में आइलैंड है छोटा सा, और पूरा शहर उस होल सिटी पूरा शहर उस मंदिर में बसा हुआ है, और 7 द्वारे पार कर अंदर भगवान विष्णु लेटे हुए हैं सर से शैया के ऊपर, और सोने का ऊपर कलश है, और दक्षिण मुखी मंदिर है, और कोई मंदिर दक्षिण मुखी नहीं होता है। ये श्री रंगनाथ की पूजा माता कौशल्या करती थी अयोध्या में। भगवान रामचंद्र ने ये भगवान श्री रंगनाथ विभीषण को दिया, विभीषण लंका ले जा रहे थे लेकिन यहां जब रखा दक्षिण की तरफ जाते हुए तो वहां से भगवान आगे नहीं गए, तो वहां दक्षिण मुखी मंदिर अभी भी विभीषण वहां पूजा करने आते हैं। जाके श्री रंगनाथ से आज्ञा मांगी और लिखाना शुरू किया, और भाषा में एक जगह पे लिखा कि जीवात्मा ज्ञानमय और आनंदमय है, तो कुरेश ने लिखना बंद कर दिया। रामानुज आचार्य ने कहा क्यों नहीं लिख रहे हो, तो मैं कह रहा हूं क्यों नहीं लिख रहे हो, कुछ बोले नहीं, बोला आपने कहा था मुझे ना समझ में आओ तो नहीं लिखूंगा। रामानुज आचार्य ने सोचा मैंने कह दिया कि जीव आनंदमय है और ज्ञानमय है, इसका मतलब जीव स्वतंत्र है। एकदम रामानुज आचार्य को भगवद गीता का ये श्लोक आया ममई वंश जीव लोके जीव भूत सनातन, हाँ तो जीव स्वतंत्र नहीं है, जीव तो भगवान के ऊपर आश्रित है, भगवान का अंश है, तो फिर लिखा जीव भगवान का अंशत्व है, भगवान का नित्य अंश है और भगवान की सेवा में ही उसको आनंद मिलता है। ऐसे करके पहली इच्छा पूर्ण की श्रीपाद यमुना आचार्य की, महान जिनका हम 1000 वर्ष जन्म मना रहे हैं श्रीपाद रामानुज आचार्य ने, फिर मन में आया कि इसकी दूसरी इच्छा को कैसे पूर्ण करें। तब उन्होंने कहा अपने 74 शिष्यों को लेकर, बड़े मुख्य शिष्यों को लेकर वो पहले निकले दक्षिण भारत में। जहां जहां गए लोगों के साथ वैष्णव धर्म का प्रचार किया और प्रचलित मायावाद का खंडन किया। मायावाद में क्या है कि हम सब ब्रह्म है, भगवान है, ये माया का शरीर हमारे ऊपर आ गया है, ये शरीर छूट जाएगा तो हम भगवान बन जाएंगे। अरे तो क्या भगवान के ऊपर माया का प्रभाव पड़ सकता है, तो भगवान कैसे होगा? वो भगवान को माया कैसे पकड़ सकती है? तो श्रीपाद रामानुज आचार्य ने सब जगह जाके कहा नहीं, भगवान स्वतंत्र विष्णु है, हम जीव उसके अंश हैं। तो विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्ट का मतलब विशिष्ट स्पेशल, अद्वैतवाद, अद्वैत मीन्स देयर इज नो टू, लेकिन विशिष्ट अद्वैतवाद का श्रीपाद रामानुज आचार्य के सिद्धांत का नाम है विशिष्ट अद्वैत। और श्रीपाद शंकराचार्य जो भगवान शंकर के अवतार हैं, हुआ क्या कलयुग के अंदर वेद और धर्म के नाम में लोगों ने यज्ञ के अंदर पशु बलियां देना शुरू कर दी और बहुत ज्यादा हिंसा होने लगी, तो भगवान बुद्ध का अवतार हुआ और बुद्ध ने आके कहा ये हिंसा बंद करो, पशु हत्या बंद करो। उन्होंने कहा वेद में लिखा है। बोला मैं वेद को नहीं मानता हूं, आप हिंसा बंद करो। तो जो कलयुग के कारण सनातन वैदिक धर्म नेगेटिव में चला गया था, बुद्ध ने उसको शून्य पे लाया। शून्यवाद, बुद्ध के सिद्धांत को कहते शून्यवाद। शून्यवाद का मतलब कुछ नहीं है, जीरो, यही अच्छे बनो अच्छे रहो, इसके बाद दूसरा जन्म है, मौत है, भगवान है, कुछ नहीं। तो ए नास्तिक हो गया, वेद का विरुद्ध हो गया। बुद्ध को हम भगवान का अवतार मानते हैं लेकिन नास्तिक है, एथियस्ट है। तो फिर भगवान शंकर को भगवान ने भेजा शंकराचार्य के रूप में कि आप जाके बुद्ध के जो शून्यवाद है इसको खत्म करके निर्विशेषवाद एक पे लाओ, अद्वैतवाद। तो जीरो से शंकराचार्य एक पे लाया अद्वैतवाद। इट इज भगवान और जीव में कोई अंतर नहीं है, हम ब्रह्म है, तत्त्वम् असि अहम् ब्रह्मास्मि, ये सिद्धांत चलने लगे। तो भगवान उस वक्त भारत से बुद्ध तो चले गए, लेकिन भारत के अंदर फिर ये दूसरे प्रकार का मायावाद आ गया। तब मधु आचार्य का प्रकट्य हुआ और रामानुज आचार्य का प्रकट हुआ 1017 में। अब 2017 है, 1017 में रामानुज आचार्य का प्रकट्य हुआ है। ये कल सुबह हम उनके जीवन की कथा और उनकी शिक्षाएं और उनके शिष्यों के साथ जो उनका बहुत बड़ा प्रभावशाली जो लेन देन है, आदान प्रदान है, इसके ऊपर कल सुबह चर्चा करेंगे 10 बजे वाले सत्संग में। अब ये ही बात यहां पूरी करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। तो क्या बात कर रहे थे? हरे कृष्णा, क्या बात कर रहे थे अभी? किसी को ध्यान में है जी? रामानुज आचार्य, हाँ, रामानुज आचार्य और मध्वाचार्य का एक नहीं, निर्विशेष नहीं। निर्विशेष का मतलब होता है कुछ भी नहीं है, होमोजीनियस, जीरो, जीरो के बाद निर्विशेष, नो वैरायटी। तो नहीं, एक नहीं दो, एक भगवान और अनेक जीव। तो मध्व आचार्य, रामानुज आचार्य, ये जो अद्वैतवाद था, जो मायावाद में बिगड़ गया था, उसको वापस ईश्वर, तीन तीन बातें याद कर लो, जीव, जगत और जगदीश। जीव मतलब जीवात्मा, जगत मतलब ये भौतिक जगत, मटेरियल वर्ल्ड, और जगदीश का मतलब भगवान। ये तीन तत्व, इन तीन तत्वों को अलग अलग समझना चाहिए, ये सब एक नहीं है। इसमें जगत झूठा नहीं है, माया नहीं है, जगत भगवान ने बनाया है। जो भगवान से चीज निकलेगी वो झूठी कैसे होगी? तो इसलिए ये तीन सिद्धांत स्थापित किया। उसके बाद, क्योंकि आपका ये प्रोग्राम जो यहां हो रहा है, ये यहां के अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी के 50 साल पूरे हो गए इसका स्थापना पे, ये 51 साल है, उनका साथ में सहयोग है। तो ये जो मधु संप्रदाय के अंतर्गत जो चैतन्य महाप्रभु का प्रकट्य हुआ श्री कृष्ण भगवान, राधा कृष्ण के युगल स्वरूप का, उन्होंने बिल्कुल श्रीपाद रामानुज आचार्य के समान, विशिष्ट अद्वैत के समान जो सिद्धांत दिया, अचिंत्य भेद अभेद तत्व, अचिंत्य भेद अभेद तत्व, एक नहीं, भगवान एक है, जीव अनेक है, और सब जीवों का भगवान के साथ अलग अलग भाव का संबंध है। सभी भगवान के सेवक हैं, भगवान स्वामी हैं, सब सेवक हैं, और कोई सेवक भगवान को सेवक भाव से सेवा करता है, कोई तो भगवान को मित्र बना के, सखा बन के सेवा करता है, कोई भगवान को अपना बालक समझ के, यशोदा माँ की तरह, कौशल्या की तरह वात्सल्य प्रेम से उनका संबंध होता है, और कुछ तो भगवान का गोपियों की तरह अपना प्रेमी मानते हैं, माधुर्य रस का रस आस्वादन होता है। तो ये बहुत बड़ी वैरायटी चैतन्य महाप्रभु ने लाके दे दी। तो ये एक्चुअली कलयुग के अंदर इवोल्यूशन हुई है, कि पहले नकारात्मक वेद के नाम में हिंसा होने लगी, हिंसा को हटाने के लिए बुद्ध जी आए, और गौतम बुद्ध ने जीरो के ऊपर लाके खड़ा कर दिया शून्यवाद, और फिर शंकर आचार्य, भगवान शंकर जी का प्रकट्य हो गया, तो उन्होंने आके शून्य से एक पे लाए, जीरो से वन पे लाए, और फिर आगे रामानुज आचार्य, मध्व आचार्य, निम्बार्क आचार्य, विष्णु स्वामी ने एक से दो पे लाए, एक भगवान और अनंत जीव। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी चार संप्रदायों में दो दो बातें लेकर और कहा कि अचिंत्य भेद अभेद तत्व, भगवान और जीव में अंतर नहीं है। किस बात का अंतर नहीं है? जीव भी अमर है, सत्य है, चित्त है, आनंद है, भगवान भी सच्चित आनंद है, इस बात में दोनों एक हैं। अंतर क्या है? अंतर यह है कि जीव है अणु और भगवान है विभू। अणु का मतलब है छोटा, विभू का मतलब है अनंत। जैसे समुद्र है, आप समुद्र का पानी घर में भर के लेके आए तो उसको भी समुद्र ही कहेंगे, लेकिन आपके यहां ये नहीं है, हमारे पास एक गंगा बहती है, भारत में गंगा महान नदी है, गंगा का जल सब भर के घर में लाते हैं बोतल में, उसको गंगा मानते हैं, वो भी गंगा है, लेकिन वो गंगा बोतल वाली में आप तैर नहीं सकते हो, नहा नहीं सकते हो, उसके अंदर मछली नहीं है और वो चलती नहीं है। तो गंगा जो स्वयं है वो तो बड़ी है, अनंत है, जिसके अंदर वो बह रही है, कई जल जीव रह रहे हैं, और ये छोटी बोतल में ये भी गंगा जल है। ऐसे भगवान अनंत है और जीव सीमित है, अणु है, इसलिए एकता ये है कि दोनों के गुण एक जैसे हैं। एक एक मिलीलीटर समुद्र के पानी का एनालिसिस करके देखो इसमें कितना साल्ट है, और सारे समुद्र में भी उतना ही साल्ट है परसेंटेज से, लेकिन समुद्र अनंत है, और एक एक गिलास में पानी जो है वो सीमित है, बस ये अंतर है जीव में और भगवान में। भगवान अनंत है, स्वतंत्र है, और जीव सीमित है और भगवान के ऊपर आश्रित है, अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। ये अंतर श्रीपाद रामानुज आचार्य ने स्थापित किया और इस सिद्धांत के अंतर्गत पूरे विश्व में श्रीपाद रामानुज आचार्य, जैसे हमने कहा दो बड़े मंदिर, दुनिया का धनी मंदिर, दुनिया का बड़ा मंदिर, ये बड़े पीठ हैं श्रीपाद रामानुज आचार्य के। और वो अपने शिष्यों के साथ जब हजारों श्लोक अलवार जो पहले हुए, कल सुबह कथा करेंगे ये श्रीरंगम मंदिर बना कैसे, इस मंदिर को बनाने के लिए कैसे एक व्यक्ति ने बड़ा परिश्रम कैसे किया, उनके दो तीन, वो तीन आदमी साथ में थे उनके शिष्य, और उन्होंने कैसे ये सारा काम किया, ये कथा कल सुबह करेंगे। बड़ी आश्चर्यजनक कथा है कि इस मंदिर के निर्माण, जो श्रीरंगम मंदिर का बड़ा निर्माण है, कि पहली दीवार ही 2 साल में पूरी हुई, दूसरी दीवार 4 साल के बाद, ऐसे करके 60 साल लगे, कितना समय लग गया उन दीवारों को तैयार करने में, और कहां से धन आ गया। और वो श्रीपाद रामानुज आचार्य का मुख्य पीठ है श्रीरंगम, वहीं श्रीपाद रामानुज आचार्य अपने शिष्यों के साथ रहते, उनको शिक्षा देते। तो दूसरा काम कैसे पूरा किया, पूरे भारत के अंदर भ्रमण किया, दक्षिण भारत से लेकर निकले केरल से होते हुए और बनारस में आए, बनारस से वृंदावन आए, बद्री का आश्रम गए, पैदल चल के उस जमाने में अपने सारे शिष्यों के साथ जहां जहां गए, और उन सब जगहों पे उन्होंने वैष्णव धर्म का स्थापना की और लोगों को, कई शिष्यों को अपना दीक्षा दिया। एक सिर्फ कथा और बता देते हैं, रामानुज आचार्य को महापूरण ने कहा कि मैंने आपको वैष्णव चिन्ह, वैष्णव चिन्ह क्या, शंख चक्र का निशान तो दे दिया, लेकिन आपको और वैष्णव शास्त्र पढ़ना है तो गोष्ठी पूरण जी के पास जाओ, जो पास में यहाँ रहते हैं। तो वो गोष्ठी पूरण के पास जाके प्रणाम किया, बोला मेरे को महापूरण ने भेजा है, आप मुझे शिक्षा दीजिए। बोला नहीं, मैं उन मंत्र नहीं दूंगा। 18 बार गए, 18 बार वापस कर दिया। तो जब श्री रंगनाथ की बड़ी पालकी निकल रही थी, तो उस दिन वहां आए हुए थे गोष्ठी पूरण, तो रंगनाथ के पुजारी ने कहा गोष्ठी पूरण, ये रामानुज बहुत पवित्र शुद्ध मेरा भक्त है, आप इसको मेरा मंत्र दो। तो गोष्ठी पूरण ने कहा ये तो भगवान रंगनाथ का आदेश है। तो जब दोबारा गए रामानुज आचार्य, जाके प्रणाम किया, बोला तुम्हें मैं मंत्र देता हूं, क्योंकि भगवान रंगनाथ ने कहा है ये मंत्र 8 अक्षर का है, ये किसी को बताना मत, ये बहुत सीक्रेट मंत्र है, गुप्त रखना। ओम नमो नारायणाय, और ये मंत्र जपने से सब वैकुंठ चले जाएंगे। रामानुज आचार्य वहां से प्रणाम करके आशीर्वाद लेके निकले, मन में आया कि मैं अकेला वैकुंठ क्यों जाऊं, सबको ना साथ ले जाऊं। प्रभुपाद जी ने जब वो भगवत दर्शन बैक टू गार्डेड मैगजीन निकालते थे, अभी इस्कान की स्थापना नहीं की थी, तो एक मैगजीन में कहते थे मैं तो वापस भगवत धाम जाऊंगा बैक टू गार्डेड, लेकिन मैं चाहता हूं ये संसार के बाकी लोगों को भी वहां साथ भगवत धाम ले जाऊं, इसको कहते हैं उदारता। सो रामानुज आचार्य ने कहा गांव के बीच में, हे भाइयों आप आओ, आपको मैं बहुत बड़ा धन देने वाला हूं, ऐसा धन जो भगवान की प्राप्ति कराएगा। अब सब गांव के लोग इकट्ठे हो गए, वो अपने शिष्यों को कहा, ऊपर चढ़ गए ढोल बजा के, और जब सब इकट्ठे हो गए तो बोला मैं गुरु से एक बहुत सीक्रेट मंत्र लाया, बहुत गुप्त मंत्र है, आप जपोगे तो आपको भगवान विष्णु की प्राप्ति और इस जीवन जन्म में शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। सो तो ऊपर से बड़े कहा के आप सब बोलो ओम नमो नारायणाय, अब ये 3 बार बोला तो सब आनंद में मगन होके नाचने लगे। उन्होंने कहा तो ये तो बड़ा धन मिल गया हमको, और गोष्ठी पूर्ण को ये पता लगा, रामानुज उनके प्रणाम किया, वो बड़े क्रोध में गए, तुमको नरक में जाना पड़ेगा, तुमने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुमको कहा था किसी को मंत्र बताना ना, और तुमने सबके सामने जाके मंत्र को बोल दिया है। रामानुज कहते गुरु जी मैं नरक में जाने को तैयार हूं, मेरे एक आदमी के नरक में जाने से लाखों आदमियों को भगवान विष्णु का धाम मिल जाएगा, तो मेरी क्या वैल्यू है, मैं नरक में रहा तो क्या फर्क पड़ता है। गोष्ठी पूर्ण कहते हैं इतना बड़ा उदार, दुनिया के सुख के लिए स्वयं नरक में जाने को तैयार है। अरे रामानुज, तुम जैसा उदार कोई नहीं होगा। और अपने बेटे को गोष्ठी पूर्ण लाए और कहा, रामानुज इस मेरे बेटे को तुम शिष्य के रूप में स्वीकार करो, इसके आप गुरु बन जाओ। तो गोष्ठी पूर्ण ने अपना बेटा रामानुज को शिष्य के रूप में दिया और बड़े प्रश्न हुए कि आपने इतना बड़ा उदारता का काम किया है, लगता है भगवान आपके द्वारा पूरे विश्व में नारायण के नाम को प्रचार करना चाहते हैं। तो ये उनका बहुत अद्भुत कथा है श्रीपाद रामानुज आचार्य की जीवन की है। बचपन से वो कितने भगवान वरदराज भगवान का कांचीपुरण, दो कांची है, एक शिव कांची एक विष्णु कांची, ये सब दक्षिण भारत में है। तो विष्णु कांची जो है वहाँ वरदराज का मंदिर है। वरदराज कहते हैं वरदान देने वाला, जो जाएगा उसको ब्लेसिंग देता है, बेनिडिक्शन देता है, उसको कहते हैं वरदराज। तो वरदराज भगवान के मंदिर में कांचीपुरण नाम का एक भक्त था जो यमुना आचार्य का शिष्य था, कांचीपुरण। वो बेचारा जाति से ब्राह्मण नहीं था और रामानुज आचार्य उससे बहुत प्रेम करते थे, अपने घर में भोजन खिलाते थे। लेकिन वो कहता, देखो मैं आपको बाकी सब सिखा दूंगा लेकिन मैं ब्राह्मण नहीं हूं और आप मेरे चरणों को मत छुइए, आप मुझे दंडवत मत कीजिए। लेकिन वो इतना भगवान श्री वरदराज का महान भक्त था कांचीपुरण, रामानुज को सेवा दी वरदराज की, कावेरी से रोज पानी भर के आना है और उस पानी से भगवान वरदराज का सेवा होगा। और ये सेवा चलती रही और ये कार्य चलता रहा रामानुज के ऊपर, उसका बहुत बड़ी कृपा हुई। अब रामानुज कहता है, ये कभी मेरे को कांचीपुरण, अपने आप को ब्राह्मण न मानता है, मुझे शिक्षा नहीं दे रहा है, क्या करूं। अपनी पत्नी को कहा, आज भोजन बड़ा अच्छा बनाओ, मैं कांचीपुरण को घर में भोजन पे बुलाता हूं। रामानुज ये कांचीपुरण का कहा, आज हमारे घर भोजन खाना। रामानुज के मन में था, इसका मैं महाप्रसाद ले लूंगा तो मेरे को हृदय पवित्र हो जाएगा, तब मेरे को ये हो सकता है शिक्षा दे। पत्नी ने बड़ा अच्छा प्रसाद बनाया, रामानुज जी उनको लेने गए, उन्होंने कहा कि रामानुज आएंगे तो हो सकता है मेरा महाप्रसाद खा लें। वो दूसरे रास्ते से घर में आ गया और रामानुज की पत्नी ने उससे प्रेम से भोजन कराया। उसने कहा, बहुत अच्छा भोजन, बड़ा रसीला भोजन। वो भोजन करके जब जा गया तो उसका बचा हुआ भोजन किसी और गरीब को दे दिया। रामानुज घर आए तो दोबारा भोजन बन रहा है, ये क्यों भोजन बनाया? कांचीपुरण बोला, आए थे मैंने विराजमान करके प्रसाद खिलाया, बड़ी प्रसाद की प्रशंसा की। बोला, उनका बचा हुआ प्रसाद? मैंने कहा, वो ब्राह्मण नहीं है, उसके बचा हुआ प्रसाद को हम कैसे खाएंगे घर में, मैंने तो किसी गरीब और भिखारियों को दे दिया। अरे उसने बोला, तुमने बड़ा आज हमारे साथ अन्याय कर दिया, मैं उनके महाप्रसाद के लिए लालिता, तुम अभी नया क्या बनाओगी? ऐसे महा उसका नाम कांचीपुरण, कांचीपुर में वरदराज उससे बात करते थे, जिसको भगवान से बात करनी हो कांचीपुरण से जाके पूछते थे। उनसे बहुत बड़ी अंतरंग शिक्षाएं ली है रामानुज आचार्य ने। तो रामानुज आचार्य के तीन जो चीजें हैं आगे चल के, वो एक अपने शिष्य के बेटे का नाम रखेगा पराशर और दूसरे का नाम रखेगा व्यास। तो तीनों दिए हुए वचन यमुना आचार्य को पूरे होंगे। यहाँ कथा को आज विराम देते हैं, कल सुबह रामानुज आचार्य की जीवनी के ऊपर और कथा करेंगे। हरे कृष्णा, जय श्री राम, हरे कृष्णा, हरे